कलौ मोहंगारे विषय विससंतप्त मनसा तमाश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृत गिरा सतां चेतस्तोषी द्विरदयवनाना मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमा।
परम सुख की प्राप्ति के लिए संसार अधीर है। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक प्राणी की क्रिया सुखी के लिए है। वह सुख का स्रोत कहाँ है? जिसकी खोज में सारा संसार पड़ा है, वह प्रकाश की धारा किधर है? जिससे सारे व्यवहार चल रहे हैं, वह अमृत का समुद्र कहाँ है? जिसकी एक बूंद से संसार का सारा हालाहल अमृत जान पड़ता है, उस देव का मंदिर कहाँ है? जिसके एक बार के दर्शन से संसार ही का आदर्शन हो जाता है, वह सूर्य किस दिशा से उगता है? जिसके प्रकाश की धारा सीधे हृदय की गुफा में पहुंचकर जीवन को ज्योतिर्मय बना देती है, वह संजीवनी बूटी किस पहाड़ और जंगल में है? जिसको पीने वाला अमर बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस ही सांस जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। स्मरण एक ऐसा साधन है जो सहज ही साहब से मिला देता है। हृदय के मंदिर में विराजे हुए साहब के दर्शनों के लिए स्मरण का रास्ता पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। यह रास्ता बड़ा सुगम है, इस पर बाल वृद्ध स्त्री पुरुष रोगी और निरोगी सब कोई चल सकते हैं। और तो क्या, बैठे बैठे और पड़े पड़े भी रास्ता तय किया जा सकता है। बैठे सूते पड़े उतान, कहें कबीर हम वही ठिकान। यह स्मरण का कार्य कितना सुगम और अनंत फल देने वाला है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख जो करी जाने कोई, सूतन लगे बिना मनी सहजे तन सुख होय। अपार फल के देने वाले ऐसे सुगम कार्य को तो रात दिन करना चाहिए। संध्या समय जिन स्तोत्रों के द्वारा सदगुरु का स्मरण किया जाता है, उसका संध्या पाठ में वर्णन किया गया है। संधि काल को संध्या कहते हैं। यद्यपि प्रातः, मध्याह्न और सायं, इस प्रकार संध्या काल तीन माने गए हैं, तथापि संध्या समय में संध्या शब्द के अधिक प्रसिद्ध होने से संध्या पाठ कहा जाता है। संध्या समय केवल भजन स्मरण और स्तुति पाठ के लिए ही है, अतः सब कामों को छोड़कर उस समय सदगुरु की स्तुति प्रार्थना वंदना अवश्य करना चाहिए। इस विषय में बहुत ही सुंदर शिक्षा वचन है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सौ कामों को छोड़कर भोजन और हजार कामों को छोड़कर स्नान करना चाहिए, और कोटि कोटि अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर सदगुरु का भजन स्मरण करना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया, पूर्वाम संध्याम जपांस्तिष्ठेन नैषमेनि बपोहति, पश्चिमाम तु समासीनो मलमहन्ति दिवाकृतम्। प्रातः संध्या समय खड़े होकर जप करने वाला रात में किए हुए पातकों को नष्ट कर देता है, और सायं संध्या में बैठकर जप करने वाला दिन के पापों को दूर करता है। जो दोनों संध्याओं में से एक भी नहीं करता, उसे पतित समझना चाहिए। 600 वर्ष से अधिक समय से कबीर पंथ में इस संध्या पाठ का प्रचलन है, तथा लाखों सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी इसका प्रतिदिन पाठ कर आत्मसुख प्राप्त करते हैं। संध्या पाठ जहां जीवन में आई बाधाओं से मुक्ति दिलाता है, वहीं इसमें दी गई गूढ़ ज्ञान को आत्मसात कर कार्य रूप में परिणित करने से जीवन का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब के चारों युगों के नाम तथा धनी धर्मदास साहब के वर्तमान तक के वंशों के नाम, नाम सुमिरन इससे मंगलाचरण किया गया है। गुरु वंदना में सदगुरु के गुणों का ध्यान कर वंदना की गई है। गौड़ी में जिस प्रकार मृग शब्द के लिए सती सत्य के लिए, पपीहा पक्षी स्वाति बुंद के लिए, शूरवीर वीरता के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं, उसी प्रकार शिष्य को गुरु चरणों का ध्यान धरने की शिक्षा है। संध्या साखी में सोहम को श्वास प्रश्वास में जोड़कर जप करने की विधि बताई गई है। आरती सदगुरु हमें पूर्ण ब्रह्म की पहचान एवं सुख सागर में स्नान करने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान स्तोत्र में चेतन सत्ता किस प्रकार सर्वत्र परिव्याप्त है इसका सुंदर वर्णन है। विज्ञान स्तोत्र में आत्म तत्व में लीन विज्ञानियों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसमें शुद्ध चेतन के स्वरूप तथा चेतन अचेतन को भी दर्शाया गया है। बाद में शुद्ध चेतन के चित विलास का वर्णन है। साखी में चारों युगों में धर्मदास साहब को शिक्षा देने एवं गुरु साधु के रूप का विवेचन है। दया सागर में विनती करने पर धर्मदास जी को सदगुरु कबीर साहब दया कर पंचकुंड स्नान एवं छठवें अकह कुंड स्नान की विधि बतलाते हैं। चेतावनी में बहुत ही सुंदर ढंग से आसन विधि, मंत्र विधि, जप विधि, सहज योग एवं हठ योग का वर्णन है। धर्मराय अपने दूतों को कबीर मंत्र का उच्चारण करने वालों को तंग न करने का आदेश देते हैं। ज्ञान गुदड़ी नाम के अनुसार ही इसमें ज्ञान प्राप्ति के हीरे लाल जवाहरात भरे हैं। संसार रचना में 5 तत्व 25 प्रकृति का योग जिसे सुमति साबुन से शुद्ध करने की विधि है। घट की चौका को प्रकाशित करने की शिक्षा है। पूरे कबीर पंथ में इस ज्ञान गुदड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। साखी में सदगुरु अपने आज्ञाकारी शिष्यों को सत्यलोक ले जाने का वचन देते हैं। वंदना साखी में शिष्य के द्वारा बहुत प्रकार से गुरु की स्तुति की गई है। विनय छंद में वाद के साखी में बहुत ही करुण भाव से सदगुरु की धनी धर्मदास जी प्रार्थना करते हैं। अर्जीनामा इस प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब के द्वारा किए गए बहुत से चमत्कारिक लीलाओं का उद्धरण देते हुए धर्मदास साहब की विनय स्तुति का वर्णन है। रत्नाबाई ने अष्टक इस छंद से सदगुरु कबीर साहब के मघर में हुए अंतर ध्यान तथा सदगुरु के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति की है। घनाक्षरी छंद में सर्व संशय के निवारक सदगुरु के सत्य पुरुष रूप का वर्णन है। प्रातः मध्यान्ह सायं एवं अर्धरात्रि में प्रयुक्त आदि गायत्री है। आदि ब्रह्म सत्य पुरुष की संध्या आरती के बाद सत्यलोकवासी पंथ श्री हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब द्वारा शुद्ध किए गए शार्दुल विक्रीडित छंद में 2 श्लोक हैं। तत्पश्चात वंदना साखी है। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से हार्दिक प्रार्थना है कि यह कैसे हमारे सभी आदरणीय संत महंत एवं भक्तों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो और सभी के लिए मंगलमय हो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।